नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। कल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण और आंध्र प्रदेश में एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए संशोधित पेमा नियमों को अधिसूचित किया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक ओडिशा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मोहाली में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों के लिए इस चरण में मतदान होगा। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए भी पहले चरण में मतदान होगा। इस चरण में 1,625 उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव शहर अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की वजह से राज्य की संस्कारधानी के रूप में जाना जाता है। इस शहर से अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी निकले हैं, इसलिए इसे हॉकी की नर्सरी भी कहते हैं। यहां से कांग्रेस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद संतोष पांडे पर फिर से विश्वास जताया है। इस लोकसभा चुनाव में कुल 15 उम्मीदवार इस संसदीय क्षेत्र से अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 18,65,000 हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार मोहम्मद फैजल, पूर्व संसद सदस्य और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमदुल्ला सैयद, भारतीय जनता पार्टी समर्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार उम्मीदवार टीपी यूसुफ और स्वतंत्र उम्मीदवार के कोया लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। असम में पहले चरण में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी मतदाता और सुरक्षाकर्मियों को ईवीएम और अन्य सामग्री के साथ मतदान केंद्रों तक भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट।
पहले चरण के जोरदार चुनावी अभियान के बाद ऊपरी असम के 14 जिले काल मतदान के लिए तैयार हैं। इस चरण में 10,000 बूथों पर मतदान होगा। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है और 5,500 से अधिक स्टेशनों पर वेब कास्टिंग की जाएगी। पहले चरण में 11 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिसका प्रबंधन पीडब्ल्यूडी या दिव्यांग कर्मी द्वारा किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, रैम्प, वेटिंग शेड और शौचालय सहित बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं होगी। इस चरण में 86 लाख से अधिक मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज असम के कोकराझार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जयंत बसुमतारी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के निर्वहन की अपील करते हुए कहा है कि ये चुनाव उनका है और उन्हें अपनी पसंद का विकल्प चुनना है। श्री कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि देशवासियों का एक वोट की कीमत कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए, क्योंकि कई बार बेहद कड़े मुकाबले में एक वोट बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। उन्होंने कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत ही देश में नियमित रूप से सुचारू ढंग से चुनाव सम्पन्न हो रहे हैं।
देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण है। मतदान के फर्स्ट फेज का दिन आने वाला है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्र भूतल पर ही बनाए गए हैं। केरल में 3 प्रमुख गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कन्नूर और कोट्टायम में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। उधर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज पोन्नई निर्वाचन क्षेत्र में 4 स्थानों पर चुनाव रैलियों में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में सांणंद और कलौल में 2 रोड शो किए। अहमदाबाद के बेजालपुर में रोड शो तथा चुनाव रैली को भी संबोधित करेंगे। कल अपना नामांकन पत्र श्री शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जामनगर में आज एक रोड शो करेंगे और वहां एक चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को मतदान कराया जाएगा। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस बीच लोकसभा के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन होगा। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी, जिसके साथ ही राज्य में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल,
आम चुनावों के पहले चरण के मतदान पर विशेष कार्यक्रम,
विभिन्न अंचलों से मतदान की खबर,
संवाददाताओं से मिलेगी सीधी जानकारी,
विशेषज्ञों की भी सुनेंगे राय।
सुनिए कल सुबह 9:30 से 10, दोपहर 3:30 से 4 बजे,
शाम 7 से 7:30 और 9:15 से 10 बजे तक आकाशवाणी गोल्ड पर।
सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उपग्रहों, उपग्रह डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74% निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों में 49% तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर एक फ्लैट, श्री कुंद्रा के नाम पर एक बंगला और शेयर शामिल हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कई प्राथमिकियों के आधार पर अनेक एजेंटों के खिलाफ जांच शुरू की थी। इन सभी पर लोगों से झूठे वायदे कर बिटकॉइन के रूप में 6,600 करोड़ रूपये ऐंठने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि राजकुंद्रा को इस मामले के मास्टरमाइंड से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के लिए नव निर्वाचित सदस्यों को संसद भवन में शपथ दिलाई। श्री धनखड़ ने भीम सिंह, परमार जयंत सिंह, सलाम सिंह, संगीता नवीन जैन और डॉ सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। मौसम विभाग ने ओडिशा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन में भीषण लू चलने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का अनुमान है। इसके अलावा झारखंड, उत्तरी कोंकण, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी जबरदस्त लू चलने के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनमणि ने लोगों से सावधानी बरतने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है।
तमिलनाडु में जो कल इलेक्शन होगा उसके लिए भी हम लोग का हीट वार्निंग है। ये जो हीट वार्निंग अभी 3-4 डेज रहेगा। पानी पीना जरूरी है और रेस्ट जरूरी है। जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है, मैदानी इलाका है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें रेन थंडरस्टॉर्म आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकता है और पश्चिम हिमालय का क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो सकता है। ये जो एक्टिव WD ये 2 दिन रहेगा।
IPL क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला आज मुंबई किंग्स से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से गुजरात टाइटंस को हरा दिया था। सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट वर्क और संतुलित शारीरिक गतिविधियां किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कुंजी है। आदित्य श्रीवास्तव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में आदित्य श्रीवास्तव ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी की प्रमुख रणनीतियों के बारे में जानकारी साझा की।
सर, तो सबसे कठिन मोमेंट में वही कहूंगा जहां मेरे पहला अटेम्प्ट ना और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रीलिम्स में भी, वो काफी कठिन दौर था क्योंकि शुरू में तो काफी डिमोटिवेशन हो गया था, लेकिन फिर अपनी फैमिली के सपोर्ट से और सब लोगों के मोटिवेशन से मैंने वापस से शुरुआत की और अपने गलतियों को एनालाइज, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया। तो आई थिंक वो वाला जो मोटिवेशन था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए तो मेरे पास पर्याप्त मोटिवेशन था क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था, तो मेरे को बस ये लग रहा था कि अब थोड़ी सी अपनी जो गलतियां हैं वो सुधारनी है और प्रोबेबली मैं अपनी सेकंड चॉइस से फर्स्ट चॉइस वाली सर्विस तक पहुंच जाऊंगा।
ईरान द्वारा इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने के बाद यूरोपीय संघ के नेता ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो गए हैं। ब्रसल्स में 2 दिन के सम्मेलन के लिए एकत्र हुए यूरोपीय संघ के नेताओं ने मिलकर यह फैसला लिया। सम्मेलन में सभी नेताओं ने मिलकर एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने सभी भागीदारों से भरपूर संयम बरतने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए कहा जिससे इस क्षेत्र में तनाव में वृद्धि हो। सम्मेलन के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि संघ ने ईरान को अलग थलग करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के महत्व पर जोर दिया। संघ ने कहा कि ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों पर निशाना साधना होगा। ईरान ने पिछले सप्ताह के अंत में इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से जबरदस्त हमला कर दिया था जिसके कारण उसे कुछ नुकसान पहुंचा था क्योंकि ज्यादातर प्रक्षेपास्त्रों को बीच में ही रोक दिया गया था। जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ के कई देश एक ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं जिसका उद्देश्य रूस को ईरानी ड्रोन की आपूर्ति पर अंकुश लगाना है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने विश्वास व्यक्त किया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र भविष्य में हवाई, समुद्री और जमीनी युद्धों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एक अज्ञात क्षेत्र है जहां युद्ध की अवधारणाएं अभी विकसित और परिपक्व नहीं हुई हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने आज नई दिल्ली में भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का इस्तेमाल मानवता के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने कई विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकसित कर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। कल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण और आंध्र प्रदेश में 1 चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए संशोधित पेमा नियमों को अधिसूचित किया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक ओडिशा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मोहाली में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।